आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 1 नवंबर मंगलवार है आज। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए। हालांकि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल का बयान है कि ये खबर मोरबी घटना से ध्यान भटकाने के लिए प्लांट की गई है।
परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं।
तो हम दोनों के आपस के कनेक्शन को टटोलेंगे और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि क्या सुकेश के लगाए आरोप सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं या नहीं। फिर आएंगे गुजरात के मोरबी, जहां पुल टूटने के 2 दिन बाद आज पीएम मोदी घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। कोर्ट में भी हादसे को लेकर पीआईएल दायर हुई है, मगर जो जांच एसआईटी कर रही है वो कितनी आगे बढ़ सकी है इस पर बात होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने बागी नेताओं पर एक्शन लिया है, लेकिन ये एक्शन दोनों पार्टियों के लिए कितना कारगर साबित होगा इस पर हम बात करेंगे। और आखिरी में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में बेरोजगारी एक बड़ा खतरा बनकर उभरने वाली है। तो इन सब विषयों को टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू से।
थैंक यू जमशेद। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर 14 नवंबर को करेगा सुनवाई। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे, घटनास्थल का भी लिया जायजा। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने लिखी दिल्ली के एलजी को चिट्ठी, सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी देने का दावा। 9 नवंबर को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। फ्रीबीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच अब करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में उम्मीदवार के नाम के आगे चुनाव चिन्ह न लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलील देशमुख को जमानत मिली। दिल्ली में कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को बंद करने की मांग। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए हुआ पार, अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ साबित। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से हराया। इंग्लैंड अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बरकरार।
नमस्कार, ये दिन भर है। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी रस्साकशी दिल्ली और गुजरात में एक साथ चल रही है। इसकी ताजा बानगी आज 2 घटनाओं में देखने को मिली। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों पर रोक है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी के दफ्तर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। केजरीवाल सरकार ने इस निर्माण कार्य को न सिर्फ बंद करा दिया बल्कि 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। दूसरी घटना देशभर में अपनी ठगी के लिए कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी है। दरअसल दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुकेश ने दावा किया कि उसने मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। इस पत्र में सुकेश ने कहा कि उसे कई बार जान से मारने की धमकियां दी गईं और तिहाड़ जेल के डीजी से उसे धमकी दिलवाई गई थी। आपको पता ही होगा, सत्येंद्र जैन खुद भी अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। सुकेश चंद्रशेखर के इन आरोपों पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है।
बीजेपी के आरोपों का जवाब देने खुद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सामने आए और बीजेपी के खिलाफ पलटवार किया।
अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं।
तो सियासी बयानबाजी से इतर आइए पहले ये जानते हैं कि सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं और इनके खिलाफ जिन मामलों की जांच चल रही है वो कहां तक पहुंची है, क्या स्टेटस है इनका। ये पूछा मैंने आर्थिक अपराध के मामलों को कवर करने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीष पांडे से।
जी देखिए, जहां तक सुकेश की बात करें तो सुकेश के मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी दोनों ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में सीधा आरोप लगाया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर जेल में रहने के दौरान दिल्ली के एक बिजनेसमैन की पत्नी को उसने धमकाया और उससे वसूली की लगभग 215 करोड़ रुपए की एक साल के अंदर में। तो इस मामले में सुकेश के ऊपर फिलहाल के लिए आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल है। और अगर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन फिलहाल के लिए जेल के अंदर ही मौजूद हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ था और गिरफ्तारी उनकी उस मामले में हुई थी जहां पर उनके ऊपर आरोप लगा हुआ था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। शुरुआत में आरोप लगे कि कुल जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो लगभग 9 करोड़ रुपए की है। बाद में दावा किया गया कि 1 करोड़ रुपए की है और इस मामले में बेल एप्लीकेशन दायर की गई है सत्येंद्र जैन के तरफ से, लेकिन अभी तक बेल मिली नहीं है। तो दोनों ही फिलहाल के लिए जेल के अंदर मौजूद हैं, दोनों के ऊपर ही गंभीर आरोप है। लेकिन जो नया पत्र लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने, उससे कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं सत्येंद्र जैन की वो बढ़ती नजर आ रही है।
सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं मुनीश, थोड़ा उसको डिटेल में बताइए और उनमें कितना दम है ये भी, क्या कोई सबूत वगैरह भी दिया है उसने?
देखिए, सुकेश ने पत्र दिल्ली के एलजी को 7 अक्टूबर को लिखा था और उस पत्र में उसने ये आरोप लगाया हुआ है कि वो सत्येंद्र जैन को साल 2015 से जानता है, आम आदमी पार्टी से वो संपर्क में था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उसे भरोसा दिया था कि उसे राज्यसभा सीट दिला देगी साउथ के किसी स्टेट से। इस तरह के आरोप उसने लगाए हैं। उसके आगे उसने पत्र में लिखा हुआ है कि 2017 में जब उसे गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा एक टीटीवी दिनाकरण मामले में, उसमें 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। उस पूरे 2 करोड़ रुपए के मामले में जब 2017 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, तब सत्येंद्र जैन जेल में मिलने आए थे और जेल में मिलने के बाद सत्येंद्र जैन ने सुकेश से ये कहा था कि प्रोटेक्शन मनी यानी कि अगर अपने जान की सुरक्षा चाहते हो तो हर महीने आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे एज अ प्रोटेक्शन मनी। कुल मिलाकर सुकेश का ये कहना है कि मैंने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सत्येंद्र जैन को एक शख्स है चतुर्वेदी के जरिए मैंने कोलकाता में ये पैसे भिजवाए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुकेश एक ऐसा शख्स है जिसने कि अभी तक लोगों को ठगा हुआ है और वो छोटा मोटा ठग नहीं है, उसे महाठग की उपाधि दे दी है। ना सिर्फ मीडिया ने बल्कि जो आम लोग हैं और जो खुद इस मामले की जांच एजेंसियां हैं उन्होंने उसे महाठग करार दिया हुआ है। तो ऐसा आदमी जब इस तरीके के आरोप लगाता है तो उस आरोप में कितनी सच्चाई है, सबसे पहले तो उसे वेरीफाई करना पड़ेगा और उसे वेरीफाई करने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि उसके आरोप सही हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ या नहीं। फिलहाल के लिए पत्र एलजी के पास में है, अभी तक ऐसी कोई जानकारी है नहीं कि किसी एजेंसी को यानी कि दिल्ली पुलिस या सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है या नहीं सौंपी गई है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इस मामले में एक प्रारंभिक जांच की जाए और पता किया जाए कि आखिरकार जो सुकेश ने आरोप लगाया हुआ है सत्येंद्र जैन के ऊपर, चूंकि वो दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं, अभी भी फिलहाल के लिए मंत्री हैं, वो उनको बर्खास्त नहीं किया गया था भले से उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे में जब इतना गंभीर आरोप लगाया है सुकेश ने तो क्या उसकी जांच कराई जानी चाहिए, और अगर कराई जानी चाहिए तो किससे कराई जानी चाहिए?
अच्छा, सत्येंद्र जैन लगातार कोर्ट में बेल की अर्जी लगा रहे हैं, क्या इस चिट्ठी से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं?
जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान है तो सत्येंद्र जैन का, क्योंकि सुकेश तो पहले से ही जेल में है, उसे बेल मिलने वाली है नहीं, कई मामले दर्ज हैं, हाल ही में सीबीआई ने भी उसके ऊपर चार्जशीट किया, दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट किया हुआ है और उसके अलावा ईडी ने भी चार्जशीट किया हुआ है। इन मामलों के अलावा भी उसके ऊपर लगभग 20 से 25 केसेस हैं जिसके ऊपर जांच चल रही है, तो उसको तो बेल मिलने वाली है नहीं। लेकिन सत्येंद्र जैन का यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों नुकसान है? नुकसान इस वजह से है क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में है, बहुत मुमकिन है कि ईडी इसी पत्र को लेकर जाए कोर्ट के सामने और बोले कि जनाब ये देखिए, इनके ऊपर जो हमने ये आरोप लगाए हुए थे कि ये जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं, इनको फल फूल दिया जा रहा है, लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं जेल के अंदर में, ऐसा आदमी 10 करोड़ रुपए के वसूली का भी आरोप लगाया ऐसे आदमी के ऊपर, तो ऐसे में इस आदमी को बेल नहीं देना चाहिए। वहां पर एक नुकसान होता है। दूसरा, अगर इस मामले में जांच शुरू होती है, जांच शुरू होने में समय लगेगा, उसमें उनकी फिर से पूछताछ होगी, तथ्य क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उस जांच की वजह से परेशानी सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र जैन को होने वाली है। तीसरा, इसमें राजनीतिक नुकसान है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला कर रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले उन्होंने शराब घोटाले में आरोप लगाया, बस के खरीद फरोख में उन्होंने आरोप लगाया, अब नया जो मौका मिला है बीजेपी को, बीजेपी भी इसे पूरी तरह से भुनाएगी। सुकेश ने अपने पत्र में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इस तारीख को मैंने ये पैसा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, कोई सबूत नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस पत्र के बाद में नुकसान सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन का है और बहुत मुमकिन है कि इसकी वजह से उन्हें कुछ और दिन जेल के पीछे रहना पड़ सकता है।
गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों और उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इससे पहले मोदी ने माच्छू नदी पर बने पुल का जायजा भी लिया। रविवार शाम मोरबी में पुल टूटने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल हैं जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है और इनमें सबसे ऊपर नाम है मोरबी के सिविल अस्पताल का। मोदी के दौरे से पहले अस्पताल की मरम्मत और रंगाई पुताई का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, लिहाजा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस इसे त्रासदी का इवेंट बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी इसे घटना की लीपापोती करार दे रही है। वहीं बात कार्रवाई की करें तो मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही पुल की देखरेख करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप भी सवालों के घेरे में है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी किया है। आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरे हादसे को लेकर स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट से बात की है, तो क्या बात हुई है आइए जानते हैं गोपी घांगर से।
देखिए, आज जो प्रधानमंत्री की हाई पावर की मीटिंग यहाँ पे मिली थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी भी यहाँ पे मौजूद थे, साथ ही पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें रेंज IG समेत जो अधिकारी है वो भी सारे यहाँ पे मौजूद थे, और जो SIT टीम का गठन किया गया है गुजरात सरकार के जरिए, वो SIT टीम के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद थे। और इस मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई है, एक तो जो ब्रिज है, ब्रिज के स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही अगर बात की जाए तो जो अक्यूज है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी गुजरात में इसका विरोध हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जांच है जल्द से जल्द इसकी जांच करवाई जाए। जो इसके प्रमुख आरोपी है, चाहे वो प्रशासन हो या प्रशासन से संबंधित कोई अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, ये भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है।
गोपी, आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से बात कर रही हैं घटना को लेकर, वहां लोगों का क्या मूड है, क्या कोई आक्रोश भी नजर आ रहा है आपको?
देखिए, मोरबी शहर में ही बेहद गुस्सा है। यहाँ पे जो लोग हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि इतने लोगों को अंदर जाने की अनुमति क्यों दी गई। सवाल यहाँ पे प्रशासन पे खड़ा हो रहा है। लोगों का ये गुस्सा है, ये प्रशासन पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रशासन की ही यह लापरवाही है कि आज 135 जितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, अभी भी कई लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि लोग जो है वो पूछते हैं कि आखिरकार ओरेवा जो कंपनी है उसको इसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस के जरिए 9 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन वो बेहद छोटी मछली हम कहेंगे, जबकि इस कंपनी के मालिक, क्योंकि ये पूरा जो ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टीज है, साथ ही जो नगर पालिका है उनके जो लोग हैं, जो कलेक्टर है जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कब होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इन लोग यहाँ के लोगों के जहन के अंदर है। और लोग जो है काफ़ी, क्योंकि हम कई जगह पर गए थे, अगर आप पूरे शहर में देखेंगे तो पूरे शहर एक गमकीन माहौल सा आपको दिखेगा।
जांच के लिए SIT भी बना दी गई है, तो अभी तक ये जांच कहाँ तक पहुँची है?
देखिए, SIT फिलहाल बन चुकी है और SIT के जो अधिकारी है, जिसमें IS अधिकारी भी है और CID क्राइम के IG जो है वो भी इसके अंदर है, साथ ही जो स्ट्रक्चर इंजीनियर और जो सिविल इंजीनियर, ये लोग भी इस SIT में है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है क्या गलती रह गई, क्योंकि 2 करोड़ रुपए इसको रिनोवेट करने के लिए स्पैन किए गए थे, तो क्या सवाल यही खड़ा होता है, क्या सिर्फ कलर किया गया और जो ब्रिज है, ब्रिज का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि जो तार है जिस केबल ब्रिज पर ये ब्रिज खड़ा रहा था, उस केबल को कहा जाता है कि सालों पुराने वो केबल है, तो क्यों ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखी गई? अगर ध्यान नहीं भी रखी गई तो इतने ज़्यादा लोगों को क्यों ब्रिज पर आने दिया गया, ये भी सवाल जो है वो हर किसी के जहन में यहाँ पर है। तो वैसे में अब 9 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, आगे भी और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। SIT अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और SIT जो रिपोर्ट है अपना वो गुजरात सरकार को सौंपेगी।
शुक्रिया गोपी। हमने आज ही आज का दिन में बात की थी कि कैसे बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में 5 बागी नेताओं पर एक्शन लिया, मगर इस एक्शन की एक कड़ी और है जो कांग्रेस से जाकर मिलती है। पार्टी ने 2 रोज पहले 6 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई वो अपने क्षेत्रों में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशियों के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहे थे। सेम टू सेम यही हाल हिमाचल बीजेपी का भी है, जिस कारण उसने कल 5 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हिमाचल में दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड देखें तो कोई भी पार्टी अपना एक टर्म कंप्लीट करके दूसरे टर्म में सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी पर इस ट्रेंड को तोड़ने का दबाव है, तो वहीं कांग्रेस पर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का। इसलिए चुनाव प्रचार में परियोजनाओं के उद्घाटन, चुनावी वादों के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड ने भी एंट्री ले ली है। अब 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, मगर सवाल यह है कि पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने की चुनौती के साथ साथ पार्टी में हो रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और यही जानने के लिए मैंने बात की aajtak.in में सीनियर जर्नलिस्ट कबूल अहमद से।
ये सच है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 3 दशक से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तो वो चिंता का सबब रही है, क्योंकि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो निश्चित तौर पे इस बार 5 साल के सत्ता के इनकंबेंसी का तो उसे झेलना ही पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जो है संख्या है जो टिकट के दावेदार थे या मौजूदा जो विधायक थे जिनके टिकट काटे गए, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए। ऐसी संख्या करीब 21 नेताओं की है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के बागी रुख अपना रखा है, और वो ऐसे कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी चिंता का सबब पैदा कर दिया है। और खासतौर से हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा राज्य है, ऐसे में अगर ये बाकी थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी का वोट काटते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का सबब बन जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं जो पार्टी से जुड़े रहे हैं या जो पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर सिरदर्द बनी है, और बीजेपी इसे सुलझाने की तमाम कवायद कर रही है, लेकिन अभी तक उसको उस दिशा में बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है।
कुबुल जी, बीजेपी से पहले कांग्रेस ने भी बागी नेताओं पर एक्शन लिया था, तो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है वो बीजेपी और कांग्रेस में सेम है या 19-20 का फर्क दिखाई देता है?
हिमाचल में जो खासतौर से अगर बागी नेताओं की हम बात करें तो दोनों, मतलब कांग्रेस बीजेपी दोनों निश्चित तौर पे अपने ही नेताओं से घिरी हुई है, लेकिन स्थितियां थोड़ा इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जहां 21 नेता 20 सीटों पे बागी होके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें खाद है वो जयराम ठाकुर का इलाका हो मंडी, वहां भी इस चीज की समस्या से जूझ रही बीजेपी, तो दूसरी तरफ 21 नेताओं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो 11 सीटों पे कांग्रेस के बागी नेता लड़े चुनाव मैदान में उतरे थे निर्दलीय, लेकिन उसमें से केवल जो है करीब 6 सीटें ऐसी हैं जो है कांग्रेस के नेता निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 3-2 विधायक पूर्व हैं, 1 विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो इस तरह से 3 पूर्व विधायक हैं और 3 अन्य नेता हैं पार्टी के, तो मुझे लगता है दोनों की स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी के 5 से 6 जो मौजूदा विधायक जो है वो बगावत करके, कई बड़े नेता हैं जो पूर्व सांसद, उनके बेटे बेटी लड़ रहे हैं चुनाव में, तो निश्चित तौर पर उनका अपना ग्राफ है, वही चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां सबसे ज्यादा चिंता का सबब बनी हुई है। तो दोनों की स्थितियां अलग हैं। कांग्रेस जो है बहुत कम सीटों पे उसको बागियों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब ऐसी 1.5 दर्जन ज्यादा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपने ही नेताओं से जूझना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि यही चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां सबसे बड़ी चिंता का सबब बन गई है, और भारतीय जनता पार्टी उनसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए है, जेपी नड्डा से लेकर जयराम ठाकुर अमित शाह की तक लगातार कवायद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। बीजेपी केवल अपने दो ही नेताओं को मनाकर बैठा पाई है, जबकि कांग्रेस जो है ऐसे पांच अपने नेताओं को समझा बुझा के जो है सामने में सफल लिए, उनका नामांकन वापस करा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कांग्रेस को मिली है। तो मुझे लगता है अगर दोनों की स्थितियों का आकलन देखें तो बीजेपी ज्यादा सीटों पर अपने नेताओं से घिरी है, कांग्रेस कम सीटों पर, तो निश्चित तौर पर दोनों की स्थितियां अलग अलग।
कुबुल, हिमाचल प्रदेश 68 विधानसभा सीटों का एक छोटा प्रदेश है, तो जाहिर है कि कई ऐसी सीटें भी होंगी जहां कम अंतर से भी मामला इधर उधर जा सकता है, उन सीटों के बारे में बताइए।
दरअसल कोई एक सीट नहीं है, अगर देखा जाए तो हिमाचल में इसकी बड़ी लंबी फहरिस्त हम गिनाते जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वहां है, आप अगर देखेंगे जहां पे सीटों की जीत हार का अंतर बहुत मामूली वोटों से रहा है, खासतौर पर हिमाचल की ऐसी करीब 1.5 दर्जन सीटें हैं जहां पे पिछले चुनाव के अगर हम नतीजे देखें तो वहां पे 120 वोटों से लेकर 2000 वोटों के बीच की जीत हार का अंतर रहा है। इन सीटों पे अगर हम इन 1.5 दर्जन सीटों को हम देखते हैं तो ऐसी 1 दर्जन सीटों पे बागी कैंडिडेट जो है या कांग्रेस से हैं या भाजपा से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर इन सीटों पे थोड़ा सा वोट अगर जो है 1500 वोट का इधर उधर होता है तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल का खेल बन और बिगड़ सकता है। तो यही वजह है कि और हिमाचल जैसा राज्य जहां पे महज 68 सीटें हैं जिसमें से अगर कोई पार्टी 35 सीटें जीत लेती है तो सत्ता में आ जाती है, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में कांग्रेस भी बहुत पिछली बार सत्ता से जब बाहर हुई तो 21 सीटों पर सिमट गई थी, तो मुझे लगता है उसके उसे 14 से 15 सीटें एक्स्ट्रा जीतनी है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी दोबारा सत्ता बचाए रखने की कोशिश है। और ऐसे में अगर ये 1.5 दर्जन सीटें हैं जो बहुत निर्णायक हैं और खासतौर से जहां पे कांग्रेस जो है 5 सीटों करने बागी से लड़ रही तो बीजेपी 21 सीटों पर अब खासतौर से कांग्रेस के साथ साथ वो अपने ही नेताओं से जूझ रही है, तो मुझे लगता है ऐसी सीटें जो बहुत कम जीत हार का अंतर वाली रही हैं वहां ज्यादा से चिंता का सबब बन सकती है।
शुक्रिया कबूल। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है। इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2022 की फाइनल क्वार्टर तक आते आते ग्लोबल लेबर मार्केट की स्थिति बदतर होने वाली है। दुनिया भर में इन्फ्लेशन का बढ़ना इसका एक कारण बताया जा रहा है, मगर ऐसे कई और कारण भी हैं, हम उन पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम साल की शुरुआती रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल वर्क आवर रिकवर कर रहा है, खासकर महिलाओं में जॉब की स्थिति बेहतर हुई है, मगर साल के खत्म होते होते इसमें भारी गिरावट की आशंका बताई जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से कहें तो वर्क आवर प्री पेंडेमिक टाइम से भी 1.5% कम रहने वाला है, जिससे 40 मिलियन फुल टाइम जॉब लॉस होने का खतरा है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझते हैं कि किन आंकड़ों से 2022 के लास्ट क्वार्टर के डिजास्टर रहने के बारे में प्रोजेक्ट किया गया है, और यही जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे में इन्वेस्टिगेटिव एंड डेटा जर्नलिस्ट सम्राट शर्मा से।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो कि इस तरफ इशारा कर रही है कि कैसे प्री पैंडेमिक से फर्स्ट क्वार्टर में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तो जॉब्स का रिकवरी स्टार्ट हो गया था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने इसे फिर से थोड़ा पीछे धकेल दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो ILO की रिपोर्ट है, कि दुनिया में पहली तिमाही में चौथी तिमाही 2019 के मुकाबले जब कोविड नहीं था तो 2022 की पहली तिमाही में जो जॉब लॉस था वो 30 मिलियन था फुल टाइम जॉब्स का लॉस, लेकिन वो अब तीसरी तिमाही तक बढ़कर 40 मिलियन पे पहुंच गया है, तो 10 मिलियन जॉब और लॉस हो गया है जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है फरवरी में। इसका असर जो है वो काफी जगह देखने को मिला है। एशिया एंड पैसिफिक 14.6 मिलियन जॉब लॉस था जनवरी में, जॉब लॉस का मतलब 2019 के चौथी तिमाही के मुकाबले 14 मिलियन का जॉब लॉस था, वो बढ़कर अब सीधे 26.8 मिलियन हो गया है। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में देखिएगा तो लगभग 3.5 मिलियन का जॉब लॉस था, अब वो 6.5 मिलियन का हो गया है। ये एक आंकड़ा है जो कि डायरेक्टली बताता है कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर ने कोविड की जो रिकवरी है उसको पीछे धकेल दिया है। इसमें एक और आंकड़ा है कि वर्किंग आवर्स में जो कमी आई है वो भी दुनिया में वो 1% की कमी थी प्री पैंडेमिक के मुकाबले जनवरी से मार्च तिमाही में, वो बढ़कर 1.4% की कमी हो गई है ये तीसरी तिमाही में जो कि सितंबर में खत्म हुई है।
अब ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन ये जो जॉब लॉस का प्रेडिक्शन है इसकी वजह क्या है, क्यों कहा जा रहा है कि 2022 के फाइनल क्वार्टर में ग्लोबल मार्केट की स्थिति खराब होने वाली है, यही पूछा मैंने सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली से।
देखिए दो तीन कारण है अगर हम इसको हिस्टोरिकली उठा के देखें तो पैंडेमिक की वजह से पहले से ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित, अभी पैंडेमिक से पूरा निकल भी नहीं पाए थे कि 24 फरवरी इसी साल रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई देखी गई। महंगाई चाहे क्रूड ऑयल का फ्रंट हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, एडिबल ऑयल हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला। और इस महंगाई को रोकने के लिए आज भी यूरोजोन की अभी इन्फ्लेशन जो है, कल ही आंकड़े आए, 10% से ऊपर आई है। इस महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अमेरिका में फेड बोलते हैं, भारत में उसको रिजर्व बैंक बोलते हैं, यूके में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, इन बैंकों ने बेतहाशा रेट्स बढ़ाए हैं। तो अर्थशास्त्र में सिद्धांत होता है कि आप जब पैसे को महंगा कर देते हैं या आप लिक्विडिटी को मार्केट से जब खींचते हैं तो उसका सीधा सीधा असर ग्रोथ पे होता है, यानी कि पूरे के पूरे विश्व की जीडीपी पर होता है। तो हमने देखे कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने विश्व जीडीपी अनुमान घटाए हैं। अगर विश्व के जीडीपी के अनुमान घटेंगे तो उसकी वजह से लाजमी बात है कि जब ग्रोथ कम होगी तो नौकरियां अपने आप कम होती हैं। दूसरा हमने देखा कि जब पैंडेमिक खत्म हुआ तो हमें बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में के शेप रिकवरी देखने को मिली। के शेप रिकवरी का अर्थ होता है कि जो कहीं कहीं किसी किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा रिकवरी है और कोई कोई सेक्टर बिल्कुल नीचे को जा रहा है जिसमें रिकवरी ना के बराबर है। तो ये के शेप रिकवरी भी काफी हद तक जिम्मेवार है। के शेप रिकवरी का एक और अर्थ भी होता है कि अमीर और अमीर हुए जा रहे हैं और गरीब हुए जा रहे हैं। तो इसके कारण से जो नौकरियां जनरेट करने की क्षमता है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की, वो क्षमता सीधा सीधा प्रभावित हो रही है। अगर आप कुछ एक दुनिया के हिस्से छोड़ दें, अमेरिका को छोड़ दें जहां पर आर्टिफिशियली जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी के भारत जैसी तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को छोड़ दें तो आपको दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में, क्योंकि ILO एक ग्लोबल एजेंसी है, UN का हिस्सा है और वो जब भी कोई परिपेक्ष देता है तो वो विश्व का देता है, वो किसी एक जगह का नहीं देता। तो पूरे विश्व के परिपेक्ष में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि नौकरियां जो हैं वो कम जनरेट हुई और आने वाले समय में, क्योंकि महंगाई अभी भी काबू में नहीं आई है, तो इसलिए उन्होंने आखिरी क्वार्टर का जिक्र किया, न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग अब पहले से ज्यादा हो रहा है, तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डर जाती हैं और डर बैठने से जो बिजनेस में निवेश है, जिसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन जब कम होगा तो नौकरियां सीधी सीधी प्रभावित होती हैं, नौकरियां कम जनरेट होती हैं। दूसरा ये भी एक कारण बताया गया ILO के रिपोर्ट में कि जो पॉलिसी के लिए जो आइडियाज चाहिए होते हैं विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को, वो आइडियाज भी ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे विश्व में आइडियाज खत्म हो गए। सिर्फ एक ही आइडिया है कि महंगाई को रोकना है तो ब्याज की दरें बेतहाशा बढ़ाते जाओ। तो महंगाई की आप ब्याज की दरें जब बढ़ाएंगे बार बार तो उससे वो अर्थव्यवस्था सीधी सीधी प्रभावित होगी।
पॉलिसी लेवल पर क्या करना चाहिए ताकि इस सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो रूस यूक्रेन युद्ध को ही बताया जा रहा है, ऐसे में ऑप्शंस क्या बच रहे हैं?
देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो मुझे लगता है अगर हम इसको भारत के परिपेक्ष में समझें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर हम भारत की बात करें तो हमें यहाँ पर जिस वजह से महंगाई है वो इम्पोर्टेड महंगाई है। महंगाई तो इसी वजह से हमें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही है, ब्याज दरें बढ़ाने से ग्रोथ कम हो रही है, ग्रोथ के कम होने से नौकरी कम हो रही है। तो अगर हम जड़ पे जाएं इसकी तो हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हमें जो आत्मनिर्भर अभियान जिसका नारा दिया गया था उसको हमें जल्दी साकार करना पड़ेगा। वो एक नारा बन के ना रह जाए, जमीनी स्तर पे उसको लगाना पड़ेगा। उसके लिए सबसे कारगर तरीका है भारत जैसे देश का कि मेक इन इंडिया को, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां जनरेट होती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। बहुत सारी कंपनीज आज चाइना को छोड़कर भारत आने को तैयार है पर उनको यहाँ पर रेड कार्पेट चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग चाहिए। तो उसके लिए लेबर रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी स्किल्ड मैन पावर जिसकी मैंने अभी बात करी वो है। तो ये सब चीजें अगर हम यहाँ पर जल्दी करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत का हम उदाहरण लेके चलें और हर दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है तो भारत का दृष्टांत उदाहरण लेना कोई गलत नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, स्किल्ड मैन पावर को जल्दी तैयार करना, अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना जिससे जो लोग पढ़ाई करके निकलते हैं ग्रेजुएशन करके वो नौकरी के लिए तैयार हो। दूसरा हमें महंगाई पर भी लगाम लगानी होगी, चाहे उसके लिए हमें GST टैक्सेस क्रूड ऑयल अपना पेट्रोल डीजल पर कम करने पड़े, हमको सप्लाई चेन डिसरप्शंस है उनको हटाना पड़े, हमको बिचौलियों का रोल कम करना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जाके असर कहीं का कहीं करती हैं। अर्थशास्त्र में नियम होता है कि आप एक से दूसरी चीज जुड़ी होती है। अब कोई मुझे बोले कि पेट्रोल के दाम कम करने से भैया नौकरी कैसे जनरेट होंगी, तो उसको हम अर्थशास्त्र से समझा सकते हैं कि अगर पेट्रोल का दाम कम होगा महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी तो नौकरियां ज्यादा जनरेट होगी। तो एक कड़ी की तरह एक से दूसरी चीज जुड़ी रहती है। तो ये कदम भारत और बाकी की जो सरकारें जहां पर ये समस्या ज्यादा है, विकासशील देशों में ये समस्या ज्यादा देखी जा रही है, वो लोग अगर ये कदम उठाएं, इम्पोर्ट पर अपना निर्भरता कम करें, मुझे लग रहा है कि नौकरी की समस्या का काफी हद तक समाधान पाया जा सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए। तो आज के दिन भर में इतना ही। अपने फीडबैक हमें जरूर भेजें। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। मेरा नाम है जमशेद कुमार सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।